نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. آج ہم سورة الرحمن پڑھنے جا رہے ہیں. الحمدللہ، دیکھتے ہیں اس سورت کی تفسیر آیت 1 سے اینڈ تک انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے. تین رکوعات پہ مشتمل سورت ہے. اب جیسے کہ میں آپ کو بتایا کہ پہلی جو آیات ہیں، شروع جو ہے وہ قرآن کی عظمت کے بارے میں. آپ نوٹ کریے گا، اس سورت میں جوڑے جوڑے آئے ہیں، دو 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 چیزوں کی بات ہے. ایک چیز صرف اکیلی آئی ہے، اور وہ ہے اللہ کا نام الرحمن. دیکھتے ہیں، بسم اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن، الرحمن اللہ تعالیٰ کا نام، اس کا ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے، یاد رکھیے یہ بات. دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی نام آپ پڑھتے ہیں، چاہے وہ ذوالجلالی والے کرام ہے، حی ہے، قیوم ہے، رحیم ہے، کریم ہے، یہ سب نام جو ہیں اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام جو ہے نا، وہ صرف دو ہیں، ایک اللہ اور ایک الرحمن. یہ بات یاد رکھیے گا. اسی وجہ سے ہم کسی کا نام بھی رحمان نہیں رکھ سکتے. رحیم رکھ سکتے ہیں، رحمان نہیں رکھ سکتے. کیا فرق ہے رحمان اور رحیم میں؟ رحمان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کا جس کو کہیں گے کہ اس کی نیچر ہے، اپنی ورڈز میں کہہ رہی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی مثال نہیں دے سکتے، لیکن یہ اس کی نیچر ہے. رحیم اس کا ایکشن ہے. رحیم کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، وہ کبھی کبھی رحم کا ایکشن کر سکتا ہے، لیکن ایک بالذات یہ صفت ہونا، یعنی ذات میں یہ صفت ہونا کہ وہ رحم کرے، یہ صرف رحمان ہو سکتا ہے، جو بلا غرض، بغیر کسی بدلے کے رحم کرے اور ہر ایک پر رحم کرے. انسان جب رحم کرتے ہیں تو وہ کسی غرض کے لیے کرتے ہیں، چاہے کہیں تعریف ہو، چاہے آخرت کا ثواب ہو، چاہے کچھ بھی، کوئی نہ کوئی غرض ہوتی ہے، اور بغیر بدلے کے نہیں کرتے، کچھ نہ کچھ بدلہ چاہتے ہوتے ہیں. لیکن اس کو نہ کوئی بدلہ دے سکتا ہے، نہ اس کو کچھ بدلہ کسی سے چاہیے، وہ بغیر اس کے رحم کرتا ہے. تو وہ رحمان ہے، اور رحمان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے اور اس کا نام بھی ہے. یاد رکھیں، صفت بھی ہے اس کی، یہ نہیں کہ نہیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہی رحم کرنے، یہ اس کی صفت بھی ہے، لیکن اس کا نام بھی ہے ساتھ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جہاں جہاں اس کا ذاتی نام اللہ آتا تھا، وہاں پہ بھی اس کی جگہ رحمان بھی استعمال فرمایا. جیسے الرحمن علی العرش استوا، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، سورہ اسراء میں آتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نام ہے نا، ذاتی نام اللہ، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے الرحمن. ٹھیک ہے، باقی جو میں نے آپ کو صفاتی نام بتائے ہیں، وہ عبد کے ساتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور بغیر عبد کے بھی رکھ سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ کو یہ بات پتا ہو کہ یہ جو نام ہیں، جب اللہ کے لیے صفات بیان کی جا رہی ہیں تو ان کا مطلب کیا ہے، اور جب انسان کے لیے یہ رکھا جا رہا ہے نام، مثلا کسی کا نام رحیم رکھ سکتے ہیں، عبد الرحیم بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن رحیم بھی رکھ سکتے ہیں، یا رعوف بھی رکھ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی رعوف ہے، تو لیکن پتہ ہونا چاہیے، یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ جب اللہ الرعوف ہے تو ویسا کوئی نہیں ہو سکتا. جب مثلا سمیع، انسان کا بھی نام رکھ سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا بھی نام سمیع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی انسانوں کے لیے بھی کہا ہے کہ وہ سمیع اور بصیر ہے انسان، مگر بہت فرق ہے نا دونوں میں. जब अल्लाह ताला का देखना है तो वो कैसा देखना होता है, जब इंसान का देखना है तो वो कैसा होता है। तो इस फर्क को पहचानते हुए अगर नाम रख लेंगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन अल्लाह ताला के ये जो दो नाम है, जाती नाम, ये नहीं आप रख सकते किसी के भी, क्या? तो ये नाम यूनिक है, अल्लाह के लिए सिर्फ बोला जा सकता। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने अपने जहाँ पे दूसरे सिफाती नाम लाए, जैसे अजीज़ुल हकीम, अलीमुल हकीम, तो दो दो करके भी आए हैं, लेकिन अर्रहमान जहाँ पे आया है, जो अल्लाह ताला की, जैसे मैंने बताया कि नेचर है, तो वो इस तरह से अकेले भी आया, ठीक है। अब यहाँ पे कहा गया अर्रहमान, पूरी सूरत का याद रखें थीम इस एक आयत में है, इस एक आयत में, कि अल्लाह अर्रहमान है। वो रहमान कौन है? यानी एक तरह से जैसे वो लोग कहते थे ना अरब के, हम अल्लाह तो जानते हैं, हमें नहीं पता रहमान कौन है। तो जानते हो रहमान कौन है? वो है जिसने ये किया, जिसने तुम्हें ये दिया, जिसने तुम्हें ऐसे बनाया, जिसने तुम्हारे लिए ऐसे किया। ये सब चीजें फिर आगे बयान की जा रही है, यानी ईच एंड एवरी आया जो आगे आएगी वो लिंक्ड बैक है टू द फर्स्ट आयत। समझ आई? हर आयत जो आगे आ रही है ना, उसका लिंक है इस आयत के साथ, और ये आपने लिंक ढूंढना है, आपने खुद ढूंढना है कि कैसे ये अगली आयतें और रहमान के साथ वापस जाके जुड़ती हैं। तुम मोहताज हो उसकी नेमतों के, वो अर्रहमान है, वो तुम्हें देता है, तुम्हें, तुम अपनी निजात के लिए भी उस अर्रहमान के मोहताज हो, ठीक है। अब ये सूरत जो है ना, इस तरह से यूनिक है कि इस सूरत की शुरुआत अल्लाह ताला के इस नाम, बाबरकत नाम अर्रहमान से होती है, ठीक है। बहुत बरकत वाला ये नाम है। और नंबर टू, इसमें बार बार फबी अलाई रबी कुमत कतिबान, या बार बार रिपीट होता है, 31 times आया ये, ठीक है। एक ये बात समझ लें, और भी आपको बातें भी बताऊंगी, लेकिन अच्छा पहले हम इस नाम को देख लेते हैं अल्लाह ताला के। और रहमान, पहले भी मैंने आपको सूरह फातिहा जब शुरू हुई थी तो बिस्मिल्लाह जब आपको पढ़ाई थी उस वक्त भी रहमान के बारे में बताया था। आज फिर आपकी दोबारा याददाश्त के लिए हम इसको देखते हैं। इसका रूट है रहमीम, रहम। रहम क्या होता है? रहम क्या चीज होती है? ये वोम्ब जो औरत का, ये रहम होता है ना जिसके अंदर बच्चा होता है, ये इसको कहते हैं रहम। उर्दू में भी हम यही कहते हैं, रहम मादर कहते हैं ना, इसको रहम कहा जाता है। अब आप देखें रहम में क्या होता है, बच्चे की हर तरह से निगहदाश्त हो रही होती है। माँ और बच्चे का एक ताल्लुक जो है ना, वो इसी रहम के जरिए है। बच्चे को नहीं पता कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है, मुझे कौन खिला रहा है, कौन पिला रहा है, कौन मेरी हिफाजत कर रहा है, कौन निगहबानी कर रहा है। वो बस अंदर है, उसको यही पता है कि हाँ बस मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, सब पता है। उसको कुछ नहीं पता कि मेरे लिए कौन क्या कर रहा है। लेकिन क्या माँ को पता होता है? जी हाँ, माँ को मालूम है कि मेरा बच्चा है और मेरा बच्चा मेरे से ताकत ले रहा है। वो उसको, यानी एक तरह से उसकी जिस्म से सारा बच्चे को मिल रहा है। वो बच्चे को की निगहदाश्त करती है, वो बच्चे को प्रोटेक्ट करती है। आप देखें कि किसी माँ के ऊपर जरा सा भी कुछ, कोई चीज तकलीफ दे उसकी तरफ आए, तो क्या होता है? वो माँ जो होती है सबसे पहले अपने पेट को बचाती है, अपने पेट के आगे हाथ रख लेती है, ये मेरे बच्चे को कुछ ना हो जाए, ऐसा ही है ना। तो बच्चे को नहीं मालूम, लेकिन माँ उसकी हर तरह से प्रोटेक्शन, उसकी निगहदाश्त, उसको खिलाना पिलाने का सारा इंतजाम वो माँ कर रही है। ये है रहम। बच्चे ने ना जाना, ना पहचाना, ना अभी मोहब्बत की, ना अभी उसने कोई बोलना शुरू किया, कुछ भी नहीं उसको पता, लेकिन माँ हर तरह से उसके लिए एक, उसके सर्वाइवल का इंतज़ाम, उसकी हिफाजत का इंतज़ाम उसको कैरी ही माँ करती है, जबकि अभी बच्चे को नहीं पता, जबकि बच्चे ने अभी कोई मेहनत नहीं की, ठीक है। और इसी को हम रहम कहते हैं। वैसे हम अपनी ज़ुबान में जब रहम बोलते हैं ना कि किसी ने किसी के ऊपर रहम किया, तो हम ये सोचते हैं कि जैसे कोई मुजरिम है, उसको सज़ा मिलनी थी लेकिन उसके ऊपर किसी ने रहम खा लिया, तो ये रहम होता है। नहीं, उस सेंस में ये रहम को नहीं समझना हमने, उस तरह से नहीं समझना, बल्कि रहम को इस तरह से समझे जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि पेट के अंदर बच्चा है और उसको किस तरह से माँ करती है, वो है रहम। कि अभी बच्चे, ये नहीं कि वो डिजर्व कर रहा था कोई सजा या कोई अजाब या कोई मसला और उसने उसके ऊपर रहम खा लिया, वो एक तर्स है, वो तर्स एक डिफरेंट चीज है। ये तर्स को उसके साथ ना, ये हम जो दो लफ्ज बोलते हैं, तर्स खा लेना, रहम खा लेना, ये डिफरेंट है, ये रहम डिफरेंट है। जो सब कुछ दे रही है मां उस बच्चे को बगैर किसी मुआवजे के, बगैर किसी उसके रिटर्न के, ये वो रहम है। ठीक है, अब इससे समझें, जब आपने रहम को समझ लिया ना, शफकत, रहमत, सिक्योरिटी, नरमी, सेफ्टी, प्रोटेक्शन, सब कुछ है ना, बिन मांगे मिल रहा है, राइट। इससे रहम को समझें कि ये होती है अल्लाह की रहमत, जब वो इंसान को नेमतें देता है बगैर उसके मांगे हुए, बगैर उसकी किसी मेहनत के, बगैर उसके किसी रिटर्न के, बगैर उसके कि अभी उसने पहचाना अपने रब को, उसके बगैर उसको अता कर रहा है, वो है अर्रहमान। समझ आ गई बात, वो है अर्रहमान। तो सुभान अल्लाह, अर्रहमान जब आप अब ये अल्लाह ताला का नाम पढ़ें तो उसके अंदर आपको समझ आनी चाहिए कि रहम या रहमा, रहमा जो होती है, रहमत जिसको हम कहते हैं, वो रहमा क्या है, मोहब्बत और पूरी तरह से किसी को संभाल लेना, उसकी केयर करना, कंपैशनेट होना, उसके लिए आसानी कर देना, उसके लिए नरम होना, ये सब कुछ होता है ना इसमें। आप वो दिमाग में लेकर आए जो माँ बच्चे के लिए कर रही होती। तो जब अल्लाह ताला खुद को रहमान कहता है ना, तो इट ऑटोमेटिकली मीन्स कि वो बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है, वो बहुत ज्यादा केयर करता है, वो बहुत ज्यादा शफकत करता है, वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करता है, वो उठा के फेंक नहीं देता, किसी और के हवाले नहीं कर देता, वो मामलात की निगहदाश्त करता है और बहुत नरमी से करता है, उसको पता है कि तुम बहुत नाजुक हो, वो तुम्हें छोड़ नहीं देता। और अर्रहमान में मुबालगा है, राहिम नहीं है वो, राहिम मतलब क्या, रहम करने वाला, अर्रहमान एग्जैजुरेशन है इसके अंदर, जैसे गदबान बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला, कैसे गुस्से से अभी फट जाएगा, ठीक है, वो होता है गदबान। आप देखते हैं ना कि हर जज्बे के अंदर, जैसे मसलन ने किसी ने कहा भूख लगी भी, किसी ने कहा ऐसी मुझे भूख लगी कि मैं मरने लगा हूं, तो ये भूख की शिद्दत हो गई, राइट। प्यास है तो किसी वो प्यास लगी भी, लेकिन कुछ ऐसी प्यास लगी होती कि इंसान कहता है कि बस मेरी जान निकलने लगी। तो हर एक चीज के अंदर एक एग्जैजुरेशन का पहलू होता है, इसी तरह रहम में भी एग्जैजुरेशन की, एक्सेसिव रहम, इस कदर ज्यादा रहम करने वाला, इतनी रहम की इंतहा, मुबालगा तो है ही इसके अंदर, लेकिन ये इसम फाइल भी है, यानी एक होता है ना वो रहम करता है, लेकिन एक है वो इस वक्त रहम कर रहा है, इस वक्त जब हम बैठे हुए हैं, ये पढ़ रहे हैं, हम यहां पे मौजूद हैं, इस वक्त भी उसका रहम है हमारे ऊपर, यानी ऑल द टाइम वो रहम कर रहा है, कोई ऐसा वक्त नहीं है कि वो अपनी रहमत की चादर उठा ले, हर वक्त इंसान उसके रहम के अंदर है। इंसान किसी भी सिचुएशन के अंदर वो इस बात को भूल जाता है कि मैं अल्लाह के रहम में हूं, यानी अल्लाह की रहमत के साए में हूं। उसको प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसको प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, अल्लाह की रहमत नजर नहीं आती, कि वो अर्रहमान है ना, वो इस वक्त भी मेरे ऊपर रहम कर रहा है, ये उसने पता नहीं कितनी और प्रॉब्लम से मुझे बचाया हुआ, इससे भी ज्यादा मुसीबतें हो सकती थी, उसने पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से मुझे निजात दी भी। लेकिन हम अक्सर शुक्र गुजारी चीजों की तब करते ना जब हमारे पास नहीं होती चीजें, जब हमारे पास होती उस वक्त नजर नहीं आती, तो हम ऑल द टाइम उसकी रहमत के साए में, उसकी रहमत की یعنی ایگزیجوریشن کی انتہا بتائی گئی. رحمان یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نام ہے جس میں یعنی کوئی ایسا رحم رحم کر نہیں سکتا. اب یہ تو ایک ماں کی مثال دی نا آپ کو صرف سمجھانے کے لیے, اور ماں کی مثال اللہ کے لیے نہیں ہو سکتی. اللہ کے کیونکہ ماں الرحمن نہیں ہے, یاد رکھیے اللہ الرحمن ہے. صرف اس نسبت سے آپ کو تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے بات, وہ صرف سمجھانے کے لیے بتائیے. تو ماں بھی ویسے رحم نہیں کر سکتی جیسے اللہ الرحمن. اس کے بعد کتنی محبت آتی ہے اور کتنا پیار آتا ہے اس رب کے اوپر جو الرحمن ہے ہمارے لیے. اس کا نام ہی الرحمن ہے, اس نے اپنے عرش پہ لکھا ہوا ہے کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب ہے, غالب ہے. اللہ اکبر, اس کا غضب بھی ہے لیکن وہ غضبان نہیں ہے. آپ نے اس کا نام کہیں نہیں سنا ہوگا, غضبان بہت زیادہ غصہ کرنے والا, لیکن الرحمن سنا ہے. پھر اس کی رحمت کو ہم کیسے بھول سکتے ہیں کبھی؟ کیوں اپنی پریشانیوں میں ہم اس کی رحمت بھول جاتے ہیں؟ اللہ تو الرحمن ہے, اس کے اس نام سے اس کو پکارا کریں. اور پھر آگے دیکھیں ہر چیز کو پھر بتا دیا کہ پوری صورت سبحان اللہ ایسے جیسے موتی پروئے ہوتے ہیں نا, پوری صورت کہہ رہی ہے وہ رحمان ہے جس نے تمہیں یہ دیا, وہ رحمان ہے جس نے تمہارے لیے ایسا کیا. تو یہ ساری اس کی رحمتوں کی نشانیاں ہیں, یہ اس کی رحمتیں ہیں, جو جو رحمتیں اس نے تم پر نازل فرمائی. پہلی رحمت دیکھتے ہیں کیا ہے, علم القرآن, علامہ سکھا دیا, تعلیم دی تم کو قرآن کی. نزل القرآن نہیں فرمایا, انزل القرآن نہیں فرمایا, علم القرآن. صرف نازل کرنا بات نہیں تھی, اس نے سکھایا تم کو قرآن, سکھایا. اور دیکھیں سبحان اللہ گائیڈنس کا سامان اس کی بات پہلے کی بعد میں فرمایا خلق الانسان. اب ہم سوچیں انسان تو پہلے پیدا ہوگا تو پھر اس کو گائیڈنس ملے گی نا, پھر وہ گائیڈنس لے گا, لیکن گائیڈنس کی بات پہلے آ گئی, ہدایت کا سامان پہلے آ گیا, پیدائش انسان کی بعد میں آئی. یہ کیوں ایسے ہے؟ آپ نے کبھی ماں باپ کو دیکھا ہے جو جن جو مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں تو سامان بچوں کا پہلے خریدتی ہیں یا بعد میں؟ پہلے خرید کے رکھنا شروع کر دیتی ہیں, یہ بھی لے لیا, یہ بھی لے لیا, یہ بھی لے لیا. انسان تو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں, اللہ نے تیری ہدایت کا سامان پہلے تیار کر کے رکھ دیا تھا, پہلے سے تیار کر کے رکھ دیا تھا کہ اس انسان کو ہدایت دینی. وہ ماں باپ جیسے سامان اکٹھا کرتے ہیں بچے کے پیدا ہونے سے پہلے, اللہ نے تیرے پیدا ہونے سے پہلے تیرے لیے ہدایت کے لیے انتظامات کر دیے. کیونکہ انسان انسان ہی نہیں ہے جب تک وہ قرآن سے ہدایت نہ لے لے, ورنہ تو وہ جانور جیسی زندگی گزارتا, انسانوں والی نہیں, وہ اشرف المخلوقات والی زندگی نہیں گزار سکتا. اس نے انسان کی تعلیم کے لیے, اس کی ہدایت کے لیے خود یہ اہتمام فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ میرا نبی تمہیں سکھا دے اس کے لیے قرآن نازل فرمایا, ایسے نہیں فرمایا. اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم دی, وہ ایسا رحم کرنے والا ہے. اس کی سب سے بڑی یعنی رحمت کیا ہے کہ اس نے قرآن کی تعلیم دے دی. اگر ہمیں لسٹ بنانے کو کہا جائے نا کہ ہم لسٹ بنا کے اور پھر بتائیں کہ اللہ کی رحمتیں کیا کیا ہیں, تو ہم پتہ نہیں ٹاپ آف دا لسٹ کیا لکھیں گے. اولاد ہے, صحت ہے, صحت نہیں تو کچھ نہیں, فلاں ہے, زندگی ہے, کچھ کچھ چیزیں لکھیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی رحمت کیا گنوائی کہ تمہیں قرآن سکھا دیا. اب دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں تو پتہ نہیں کیا جہنم کی باتیں ہیں اور فلاں باتیں ہیں اور عذابوں کی باتیں ہیں اور جی قتل و غارت اور خون خرابے کی باتیں ہیں اور یہ حرام ہے اور وہ حرام ہے اور فلاں ہے, اسی لیے ہم قرآن کی طرف نہیں آتے. حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, رحمان علم القرآن, رحمان کی تو یہ رحمت ہے تم پر کہ اس نے قرآن نازل فرمایا اور تمہیں سکھا دیا. تم اس کی رحمت کو پہچانو, اس نے تو اپنی رحمت کا ایک یعنی مینیفیسٹیشن آف از رحمہ, یعنی ایک اس کی رحمت کی جو ایک شکل جس میں اس نے اپنی رحمت کو ڈسپلے کیا ہے انسانوں کے لیے، شو کیا انسانوں کے لیے، وہ یہ کہ ہے کہ ان کو قرآن سکھا دیا. تم کہتے ہو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے لیے مشکل ہے، مصیبت ہے، اللہ معاف کرے کہ پریشانی ہے، بڑی مشقت ہے اس کے اندر، یہ تو رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے پہلے فرما دیا نا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے تو آسان فرما دیا اس قرآن کو. تو اس کی رحمت ہے، اس نے قرآن سکھایا اور اس کو آسان بھی فرما دیا. اور یہ واقعی اس کی رحمت ہے قرآن، کیونکہ جب تک انسان اس قرآن کے ساتھ جڑا رہتا ہے وہ ہدایت پہ رہتا ہے، اور جب اس قرآن سے دور ہونے لگتا ہے تو چاہے کتنا بھی پڑھ لیا ہو. وہ دیکھیں پہلے ہم نے پڑھا تھا نا، فحل میں منتقل، وہ ہے نا سیت پکڑنے والا، اس کو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ یہ یاد دہانی ہے تمہارے لیے. واقعی یہ یاد دہانی اگر زندگی سے نکل جائے، ریمائنڈر نکل جائے، تو کتنا بھی پڑھا ہوا ہے آپ نے پہلے، انسان راستہ بھول جاتا. بہت سارے لوگ میں نے ایسے دیکھے جب تک قرآن سے جڑے ہوئے تھے سیدھے سیدھے چل رہے تھے، جہاں قرآن کا سیکھنا سمجھنا ان کی زندگیوں سے نکلا، بلیو می میں نے اپنی ان آنکھوں سے دیکھے، وہ پھر وہ پرانے طریقوں پہ چلے گئے، پھر پرانی زندگی میں چلے گئے، سب کچھ ایسے بھول بھال گیا جیسے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، جیسے کبھی سنا ہی نہیں تھا، پھر دنیا میں کھو گئے، پھر غفلتیں چھا گئیں. یہ تو قرآن ہے جو غفلتوں کے جو ڈسٹ ہے جو اوپر ہمارے پڑ جاتی ہے نا، یہ اندھیرے، یہ پردے پڑ جاتے ہیں غفلت کے، یہ قرآن اتارتا رہتا ہے. ہم اگر سوچتے ہیں نا کہ قرآن ایک دفعہ پڑھنے سے بس آ گیا، مجھے تو پتا ہے اس میں کیا ہے، اب مجھے کیا ضرورت ہے اور پڑھنے کی، نہیں. یہ دنیا کے اندر اتنی اٹریکشن ہے اور اس قدر یہ اپنے اندر غرق کر لیتی ہے کہ غفلتوں کے پردے پڑنے لگتے ہیں. اور اگر یہ قرآن ان غفلتوں کے پردوں کو نہ ہٹائے، نہ دور کرے، تو وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں کہ انسان کا دل ان کے اندر بالکل گم ہو جاتا ہے، اس کو نہیں پتا ہوتا کہ پھر حقیقت کیا اور میں کس طرف چل پڑوں. اور وہ سوچتا ہے میں تو ٹھیک ہی ہوں، میں تو پڑھ چکی ہوں، میں نے اتنے سرٹیفکیٹ لے لیا، میں نے ایسے کر لیا. یہ تو قرآن اللہ نے رحمت بنا کے ہمیں دیا ہے، سکھایا ہے. کون ہوگا جو اس رحمت سے انکار کرے؟ کون ہوگا جو چاہے گا کہ یہ رحمت 4 سال، 5 سال، 6 سال میری زندگی میں رہے، اس کے بعد نہ رہے؟ نہیں، مجھے اس کے بعد نہیں ضرورت ہے، اس کے بعد بس میں تلاوت کر لیتی ہوں، بس ٹھیک ہے، کافی. اس میں اور آگے بڑھو اور اپنی علم، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یہ حدیث بتائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم والوں کا دل اس سے کبھی سیر نہیں ہوتا، جی بھرتا ہی نہیں اس سے. کون ہوگا جو یہ کہے گا کہ ہاں میرا جی بھر گیا، بس کافی ہو گیا؟ کون ہوگا جو اس رحمت کو ہاتھ سے جانے دے گا؟ یہ کوئی دنیا کی ڈگریاں تھوڑی ہیں کہ 12 جماعتیں پڑھ لیں تو آپ دوبارہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک سبجیکٹ پڑھ لیا، اب دوبارہ کیوں پڑھوں؟ یہ وہ نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو اس کے ساتھ کمپیئر نہیں کریں جو دنیا کے کلام ہے. تو الرحمن نے تمہیں تعلیم دے دی قرآن کی، اہتمام کے ساتھ آہستہ آہستہ سکھایا. باب تفعیل سے نا میں نے بتایا آپ کو، علم یعلم تعلیم، تو ایک دفعہ تو پھر اس کو پڑھنا کافی نہیں ہے، آہستہ آہستہ کر کے اللہ نے سکھایا. اللہ نے بڑے اہتمام سے سکھایا، اللہ نے تو اپنے نبی کے اوپر 23 سال میں اتارا اس کو. ہم کہتے ہیں کہ ابھی شروع کرتے نہیں ہیں تو سب سے پہلا کوشچن یہ ہوتا ہے یہ ختم کب ہوگا کورس. اتنا افسوس ہوتا ہے مجھے جب میں یہ کوشچن سنتی ہوں کہ یہ ختم کب ہوگا، ہم نے شروع نہیں کیا، ہمیں ختم کرنے کی جلدی پڑی. یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ میری زندگی کا ساتھی ہے، آپ اس سے جدائی نہیں اب ہو سکتی. یہ وہ ہے جو زندگی بدل دیتا ہے، دل بدل دیتا ہے، دوستیاں بدل دیتا ہے، مجلسیں بدل دیتا ہے، باتیں بدل دیتا ہے، زندگی گزارنے کا مقصد بدل دیتا ہے، بیکار کے مشغلوں سے نکال لیتا ہے. پھر انسان ایسا ہو جاتا ہے اس کے بعد کہ اس کے شوق ہی بدل جاتے ہیں. اور یہ دیکھیں اتنا بڑا آنر اللہ تعالیٰ نے دیا اس بات کو کہ علم القرآن، اس کا ٹیچر کون ہے اس قرآن کا، कोई बड़े शेख से पढ़ता है ना तो बार बार अपने शेख का नाम मेंशन करता है कि जी मैंने फलां शेख से पढ़ी हुई हूँ, मैं फलां शेखा से पढ़ी हुई हूँ, मैं फलां से पढ़ी। लेकिन यहां पे देखें कुरान को सिखाने वाला कौन है, कुरान का टीचर कौन है? खुद अल्लाह ताला। और उसने किसको पढ़ाया, ये किसको सिखाया, ये मेंशन नहीं है यहाँ पे। ये नहीं फरमाया नबी को सिखाया, लोगों को सिखाया, अन्नास बता दिया जाता, ईमान वालों को सिखाया, नहीं, ओपन छोड़ दिया। क्यों? इसलिए कि ये हर एक के लिए, अल्लाह ने दरवाजा बंद नहीं किया, कोई भी सीख सकता है। अल्लाह है सिखाने वाला, जो चाहे आके उससे सीख ले, चाहे बूढ़ा हो, जवान हो, मोमिन हो या काफिर हो, फरमा बरदार हो या नाफरमान हो, सब के लिए दरवाजे खुले। अल्लाह ने तो काफरों के लिए भी बंद नहीं किए थे। वो कौन थे जिनको सिखाया जा रहा था, समझाया जा रहा था, सुनाया जा रहा था ये कुरान मक्का में? वो कोई ऐसे पक्के सच्चे मोमिन थोड़ी थे, काफिर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंग करने वाले थे, उनको सिखाया जा रहा था। अल्लाह ने तो उनके लिए भी दरवाजे बंद नहीं किए। हम कैसे दरवाजे बंद कर सकते हैं? लो फलां को क्या बताना, वो तो मैंने देखा था वो तो हिजाब भी नहीं लेती, या फलां को क्या बताना वो तो वहां पे ये कर रही थी, इस तरह के काम कर रही थी। नहीं, अल्लाह ताला ने दरवाजे नहीं बंद किए तो हम भी ना दरवाजे बंद करें, सबके लिए आई। उसने सिखा दिया इस कुरान को और बड़े तमाम से सिखा दिया, और ये है उसकी रहमत का पहला जहूर इंसानियत के ऊपर कि उसने कुरान की तालीम दे दी। हमें भी कुरान रहमत लगता है? अल्लाह की रहमत लगता है? जो इस रहमत का मजा चख ले ना, उसको रहमत लगेगा। और जिनके बस शेल्फ्स में पड़ा हुआ है, उसने क्या पाया इसकी रहमत से? और इसके बाद कौन होगा जो ये कहेगा कि नहीं, मुझे अल्लाह टीचर नहीं चाहिए और मुझे ये कुरान का सीखना नहीं चाहिए? उसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया खलकल इंसान, उसने पैदा किया इंसान को। तुम्हें अल्लाह कोई बंदर, कोई मेंढक, कोई छिपकली, कोई सांप भी बना सकता था, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया। मैंने और आपने कौन सी एप्लीकेशन दी थी जी मुझे इंसान बनाया जाए? हम चाहते हैं हमें इंसान बनाया जाए, हमें चॉइस दी जा रही थी। नहीं, सोची कभी, सोचा आपने कि मैं और आप एक बिल्ली हो सकते थे, एक कुत्ता हो सकते थे, एक गधा हो सकते थे, एक घोड़ा, कुछ भी हो सकते थे। जो कहीं खड़ा हुआ, कहीं बंधा हुआ, अल्लाह अकबर, अल्लाह तूने इंसान बना दिया मुझे, मेरी कौन सी ऐसी काबिलियत थी, मेरे अंदर क्या था? तो जब ये, चूंकि देखिए असल बात ये है कि हमें ना नियमतों का एहसास इसलिए नहीं होता कि, जैसे मैंने अभी कहा, नेमत जब तक हमसे छिनती नहीं है ना, हमें पता ही नहीं होता कि ये भी कोई नेमत थी। इसी तरह चूंकि हम तो कभी कुछ और बने ही नहीं, हम तो जब से पैदा हुए इंसान ही है, तो हमें पता ही नहीं कि ये कोई नेमत है, हमें इसका शऊर ही नहीं, हमने कभी सोचा ही नहीं। वो इंसान ही है, हम इंसान ही होना था हमने, और इंसान ही हमने बनना था, ये क्या बात हुई कि हम कुछ और होते? नहीं, हो सकते थे। क्या कमाल था मेरा और आपका कि जो है हम इंसान बन के बैठे हुए, तमाम मखलूकात से अबव होके बैठे, अशरफ मखलूकात बन के बैठे। अल्लाह ताला ने फरमाया उसने पैदा किया इंसान को, इंसान तुझे बनाने वाला तेरा रब है। और याद रखे, मुर्दा वो नहीं है जिसके अंदर रूह नहीं है, मुर्दा वो है जिसके अंदर उसके रब की पहचान नहीं, कि उसका मालिक कौन है, उसका पैदा करने वाला कौन है। जिस जो ये नहीं जानता ना मेरा पैदा करने वाला कौन है, वो मुर्दा ही है, वो जिंदा नहीं है। खलकल इंसान, और इंसान किस चीज से, ये लफ्ज किस से? एक तो उनस से भी है और निसियान से भी है। निसियान यानी भूलने वाला, आए बेचारा ये तो भूल जाता है, बार बार भूल जाता है। आदम अलैहिस्सलाम भी भूल गए, हमारे बाप भूल गए थे बात को, इसको तो रिमाइंडर चाहिए होता है, बार बार इसको बताना पड़ता है। हम सब भी इंसान है ना, बार बार हमें रिमाइंडर चाहिए। इसीलिए तो अल्लाह ने कुरान उतारा, और कुरान को क्या फरमाया, ये अज़िक्र है, ज़िक्र, रिमाइंडर। देखो, तुम्हें अगर अल्लाह ने भूलने वाला बनाया ना, तो तुम्हारे लिए रिमाइंडर भी तो भेज दिया। लेकिन कौन है जो इस रिमाइंडर से फायदा उठाए, इससे याद दिहानी ले ले, जब रिमाइंडर ही बंद करके रख दिया? जो क्लॉक आपको अलार्म देता था और आपको फजर पे उठाता था, अगर आप उस क्लॉक को ही बंद कर दें, क्या रिमाइंडर होगा आपके, क्या अलार्म बजेगा? ये तो हमारे लिए अलार्म है जो हमें जगाता है, वरना हम तो सो जाएं। जिसने इसको बंद कर दिया ना, वो सो गया बस, समझो इसको बंद नहीं करना। इसको अपनी जिंदगी में खुले रखना। आप यहां से थी क्या, आपको यहां पे अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपने समझा कि यहां से मैंने बिल्कुल पूरा इल्म ले लिया, अब मुझे जरूरत नहीं, आप कहीं और जाके पढ़ लें, लेकिन इसको ना छोड़ें, इस कुरान को नहीं बस छोड़ना। फिर देखें, और निसियान से है और उन्स से भी है। उन्स मोहब्बत अल्लाह ने इसके अंदर डाला है, ये उन्स करता है और उन्स चाहता है। देखें ये उन्स और मोहब्बत करता है ना, दूसरों से, इंसानों से भी करता है, जानवरों से भी करता है, अल्लाह ने इसके अंदर ये डाली हुई और ये उन्स चाहता भी है। तो तुम्हारे अंदर का ये खला क्या चीज पुर कर सकती कि तुम उन्स चाहते हो अपने लिए, अपने लिए भी चाहते हो मोहब्बत, तो फिर ये अल्लाह का कलाम है जो उस खला को पुर कर सकता है, जो इस कमी को पूरी कर सकता है, कि ये बताएगा तुमको कि अल्लाह को भी तुमसे कितनी मोहब्बत है। अल्लामहुल बयान, और अगली जो क्वालिटी तुम्हें दी है अल्लाह ताला ने वो ये दी है कि तुम्हें बयान की कुव्वत दी। बयान का मतलब ये नहीं है सिर्फ कि हम सोचें बोलना तुम्हें सिखा दिया, बोलना तुम्हें सिखा दिया तो ठीक है, बोलते तो वो भी हैं। देखें आप, ये हमने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जब किस्सा पढ़ा था तो चींटी भी बोल रही थी दूसरी चींटी को, कह रही थी सुलेमान का लश्कर आ गया, तो बोलना तो उनको भी आता है, कुछ ना कुछ लैंग्वेज में बोलते होंगे, पता नहीं क्या होती होगी उनकी लैंग्वेज, लेकिन कुछ तो उनको भी समझ है कि कैसे बोलना है। तो फिर इंसान का बोलना क्या है, कि याद रखें इंसान का बोलना सिर्फ ये नहीं है कि वो अपनी यानी एक मैसेज दूसरे को मैसेज पहुंचा दिया। आपको पता है वेल्स का भी पता चला है कि वो इतनी इतनी दूर से भी मैसेजिंग करती हैं एक दूसरे को, मीलों दूर से दूसरी वेल को मैसेज भेज देती हैं। तो यहां पे ये माना नहीं है सिर्फ कि बोलना बता दिया, बोलना तो दूसरी मखलूकात भी बोल सकती हैं, बल्कि इंसान को कम्युनिकेशन सिखा दी, ऐसी चीजें सिखा दी कि वो ऐसी ऐसे बयान करने की सलाहियत दे दी, एक्सप्रेस करना बता दी, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को, अपनी जो दूसरों से कोई एक्सपेक्टेशन है उसको इंसान कम्युनिकेट कर सकता है, इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, अपनी जुबान से बोल के भी, अपने हाथ से लिख के भी, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी। और सिर्फ बोल की बात नहीं है, बयान की बात हो रही है, बयान कर देना। अब वो उसका कोई उर्दू में ऐसा वर्ड नहीं है जिसे हम इसकी ट्रांसलेशन करें, इसलिए तो बोल ही लिख दिया। तो एक तो इसका माना ये भी कहा गया है कि अल्लामहुल बयान, अल्लाह ने उसको बयान करना सिखा दिया, यानी अब ये कुरान को बयान करे आगे, तो जब इसको बयान दे दिया तो ये कुरान को आगे बयान करे। तो एक ये माना भी है, और दूसरा माना यही है कि अल्लाह ताला ने इसको इतनी बड़ी सलाहियत दी जो हर एक में नहीं है। देखिए वो क्या एक दूसरे को सिग्नल ही दे सकते हैं, एक दूसरे को ये पहुंचा सकते हैं, हाँ भाई लश्कर आ गया, लेकिन वो इस तरह से अपनी प्यार, अपनी मोहब्बत, अपनी केयर, अपना रोना धोना या अपने गम या अपना इन चीज़ों को कम्युनिकेट नहीं कर सकते। किसी को खतरे का बताना, किसी को अवेयरनेस दिलाना, कोई और संजीदा बात सोचना, गौर व फिक्र करना और फिर उसको अदा करना, इस तरह की चीजें नहीं कर सकते। तो ये जो दुनिया की जितनी जुबानें हैं, ये सारी जुबानें भी अल्लाह ताला की निशानी में से हैं कि ये इसलिए अल्लाह ताला ने खुद पैदा की है ताकि इंसान इनके जरिए आगे बात पहुंचाए। तो कोई भी जुबान को आप ये नहीं कह सकते ये जुबान बड़ी बुरी है क्योंकि ये काफरों की जुबान है, नहीं, सारी जुबानें अल्लाह की निशानियां हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह की निशानियां हैं कि अल्लाह ताला ने ये निशानियां दी हैं हमें, हम इनसे फायदा उठाते हुए आगे बात को पहुंचाएं। ठीक है, तो अब हमें पता चला कि अल्लाह ने कुरान दे दिया, वो जो एक बहुत बड़ी रहमत है, इसका मतलब अल्लाह ने हमारी हिदायत का सामान दे दिया, वो अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसे ही नहीं छोड़ दिया, उसको हिदायत भी दी और ये ऐसा सामान दे दिया जो उसकी दुनिया और आखरत को संवार देता है। और फिर अल्लाह ताला ने उसको इंसान बनाया, ये बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है। फिर अल्लाह ताला ने उसको इतनी बड़ी रहमत दी कि कलाम के जरिए वो दूसरों तक अपनी बात को पहुंचा सकता है, लिख के पहुंचा सकता है और तरीकों से पहुंचा सकता है। ठीक है, अच्छा एक और बात यहाँ पे, खलकल इंसान जैसे कहा गया, इस तरह से खलकल कुरान नहीं कहा गया, क्योंकि कुरान मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। ठीक है, ये भी बात समझने की है। अच्छा, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि अल्लामहुल बयान में, ये भी अल्लाह की जो बड़ी रहमत है कि इसमें उलमा ने अल बयान, मतलब इससे कुरान भी मुराद लिया, कि अल्लाह ने इंसान को कुरान पढ़ना सिखाया और इसको बताया कि वो आगे इसको फैलाए। अगर इंसान दुनिया में हर उल्टी सीधी चीज़ पढ़ ले और ये भी सीख रहा है, वो भी सीख रहा है, उसको भी आगे पहुंचा रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन कुरान कोई ना सीखा, ना इसको सही समझा और ना इसको आगे बताया, बयान किया, तो क्या किया उसने? अल्लाह की रहमत को ही ना वो आगे पहुंचा सका। ठीक है, इसके बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अश्शम्स वल कमर बिहस्बान, जो सूरज और चांद हैं इनको हिसाब के साथ रखा। इसका मत दो माने हैं इसके। एक माना तो ये है कि सूरज चांद को इतने हिसाब के साथ अल्लाह ने चला दिया, एक रास्ते पर, एक ऑर्बिट में अपने तैर रहे हैं, अपने मदार में तैर रहे हैं और करोड़ों सालों से चल रहे हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया, कोई आगे पीछे नहीं हुए, लगे बंधे अपनी सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं, कंप्लीट ऑर्डर है। इतने हालांकि बड़े मैसेज हैं, जमीन क्या चीज है, जितना बड़ा सूरज है उसके सामने जमीन तो कुछ भी नहीं, फिर भी देखो फर्मा बरदारी के साथ चल रहे हैं। और दूसरे यानी दूसरा माना क्या है कि बी हुस्बान यानी हिसाब के लिए चल रहे हैं, इसलिए उनको बनाया है ताकि इंसान हिसाब किताब रख सके। किस चीज का? सूरज के जरिए वक्त का हिसाब किताब है कि हम अपनी घड़ियां भी सूरज के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। सूरज हमारी घड़ियों के मुताबिक अगर चलने लगे तो हमारे तो पता नहीं फिर क्या हाल हो जाए, लेकिन हम अपनी घड़ियां सूरज के मुताबिक एडजस्ट, पीछे नहीं होता सूरज, कभी लेट नहीं होता सूरज, इतना पाबंद है अपने स्केड्यूल का। हमारी तरह नहीं कि बुलाया 5 बजे और हम पहुंचे किसी के घर 6 बजे, सूरज भी इस तरह चलने लगे देखें तो क्या हाल हो कि मुझे तो देर हो गई तैयारी करने में, आज तो आज मैं निकला ही देर से, तो हमारा सोचे क्या हाल बने। लेकिन अल्लाह की जो निज़ाम है ना, अल्लाह ताला के तमाम इतने डिसिप्लिन हैं, हमने आज तक इनसे भी डिसिप्लिन नहीं सीखा अपनी जिंदगियों में। देखो अल्लाह की मखलूकात कैसी हैं, कितनी ऑर्गेनाइज्ड हैं, कितनी डिसिप्लिन्ड हैं, इतनी वक्त की पाबंद हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने हमें नमाज भी दी, वो भी वक्त की पाबंदी के साथ है, वो भी अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते, डिले नहीं कर सकते, सुबह की रात को पढ़ रहे हो, रात की शाम को पढ़ रहे हो, ऐसे नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला की ये मखलूकात देखो हिसाब किताब के साथ हैं। फिर चांद भी वो हिसाब के लिए अल्लाह ने पैदा किया कि तुम अपनी तारीखों का हिसाब इससे रख सको। एक बात मैं सोच रही थी कि देखें इन लोगों की क्रिसमस आती है हमेशा सर्दियों में, कभी उसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन सुभान अल्लाह हमारी ईदें आती हैं जो साल में कभी गर्मी में, कभी सर्दी में, कभी बहार में, कभी खिजा में, हमें हर मौसम मिलते हैं, हमें रोजे हर मौसम के मिलते हैं। तो ये इसलिए कि चांद के साथ हिसाब किताब है तारीख का, और सूरज के साथ हिसाब किताब है टाइमिंग का, डे के। अब देखिए यहां से दो दो चीजें ये हो गई ना, सूरज और चांद और नजम, व नजम व शजर, और तारे और दरख्त ये सजदा कर रहे हैं। अच्छा अब देखें अल्लाह की मखलूकात में इतनी परफेक्ट हार्मनी है ना, इस कदर सब चीजें अपने अपने कामों के अंदर लगी हुई है, जैसे उनकी मूवमेंट, जैसे उनकी टाइमिंग्स, जैसे उनकी कर दी अल्लाह ने रख दी, उसी तरह वो बिल्कुल चल रही है, कोई ना आगे ना पीछे, ना कोई देरी ना सवेरी। और जिसका जो काम है अल्लाह ताला ने नजम और जो सितारे और जो दरख्त हैं उनके लिए फरमा दिया, वो सजदा कर रहे हैं। सितारे इतने बुलंद होके भी अल्लाह के आगे सजदा करते हैं, और दरख्त जमीन पे होके भी, खड़े होके भी अल्लाह के आगे सजदा करते हैं। उनके सजदे कैसे हैं अगर हम सोचें अपने सजदों की तरह, तो अपना सजदा ना समझें, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे सजदे की कैफियत और है, तरीका और है। उनके सजदे जो जैसी मखलूक है वैसा ही उसका तरीका है। हम उनके सजदों को समझ नहीं सकते, ये कुरान से पता चलता है। हम उनके सजदों को, उनकी नमाजों को, कि कुरान से पता चलता है हर मखलूक ना सिर्फ सजदा करती है बल्कि तस्वीह भी करती है, बल्कि नमाज भी पढ़ती है। फरमाया तुम उनकी नमाज समझ नहीं सकते। तो हमें समझ आए ना आए, मगर ये भी सजदा करें, इवन सूरज भी सजदा करता है, हमें हदीस से पता चलता है। वह इम मिन शई इन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही, कोई चीज ऐसी नहीं है मगर अल्लाह की हमद के साथ उसकी तस्बीह बयान करती। तो ये वो इतनी बुलंदी पे जो है वो भी सजदे कर रहे हैं, और शजर भी सजदे कर रहे हैं। और दूसरा शजर से मुराद बाज उलमा ने ये भी लिया है कि सॉरी नजम से बार उलमा ने ये लिया है कि वो नबाता जो जमीन के ऊपर ही फैलती हैं, यानी जैसे जिनकी बेलें जैसे टाइप नहीं होती कि फैल जाए, बेल होती है कोई खड़ी नहीं होती सीधी, तो एक है शजर और एक है नजम, एक है जो ऊपर को जाता है और एक है जो नीचे ही फैलता है, तो दोनों सजदा करें। तो ये भी माना हो सकता है, सितारे भी माना हो सकता है। वस्समा रफ़अहा, और आसमान को बुलंद कर दिया, और उसने आसमान को बुलंद कर दिया। आसमान से मुराद क्या है? ये जो जितने भी हम चीजें ऊपर देख रहे हैं ना, सितारे हैं, सैारे हैं, चांद हैं, सूरज, जो भी हम चीजें ऊपर देखते हैं, हवा है या क्या, ये जो बुलंद इसको किया है सबको, ये अल्लाह ने किया। क्योंकि समा जो लफ्ज है ना, ये उलूफ के लिए आता है, यानी बुलंदी के लिए आता है। तो उसने असमा को बुलंद करते, तो जितनी चीजें ऊपर हैं वो उसने बुलंद की हुई है, चाहे अब वो ये ओजोन लेयर्स हैं, चाहे कुछ हैं, इनको उसने ही बुलंद करके रखा हुआ। एक आसमान की छत बना दी है उसने की भी। और जितनी चीजें हमें ये सब नजर आती हैं, जितने सिस्टम्स और सारे, ये आसमाने दुनिया के नीचे हैं, आसमाने दुनिया के नीचे, इनसे ऊपर आसमाने दुनिया है, फिर और सात आसमान, यानी ये कुल मिला के सात आसमान है। कहाँ तक इनकी बुलंदी होगी? अभी तो हमें सितारे सैारे जो दूर दूर हैं, कितने मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर हैं हमसे, उन तक तो कोई पहुंच गया, उनके तो अभी उनके बारे में कुछ इल्म नहीं है, बस ये पता कि इतनी इतनी दूर भी सितारे मौजूद हैं। इतने मिलियंस लाइट ईयर दूर अगर सितारे हैं जो आसमाने दुनिया के नीचे हैं, तो इससे आगे क्या है? इंसान का इल्म कुछ भी नहीं है, इंसान नहीं जानता। हम तो चांद पे ही पहुंच के अभी फूले नहीं समा रहे कि चांद तक पहुंच गया इंसान। मार्स पे अभी उतर नहीं सके, जो सबसे करीबी आपके प्लेनेट है। इस अपने सिस्टम से, सोलर सिस्टम से बाहर जाना तो बहुत ही दूर की बात है, ये तो हमारे कमजोरी के हालात हैं। वदाल मीजान, और उसने रख दी मीजान, मीजान को पैदा किया। मीजान क्या? तराजू, ठीक है। अब तराजू को रख दी का मतलब क्या है? तराजू किस चीज की अलामत होता है? आपने कभी देखा है हमारी कोर्ट्स के बाहर ना तराजू बनी होती है, क्या मतलब होता है उसका? जस्टिस, इंसाफ। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अल्लाह ने इंसाफ को कायम कर दिया दुनिया में, यानी दुनिया इंसाफ पर चल रही है। आसमान को भी उसी ने बुलंद किया बगैर सतूनों के, और मीजान भी उसने रख दी ताकि लोग एक दूसरे का हक ना मारें। बात के ये, यानी अल्लाह ताला ने सूरह हदीद आगे हम पढ़ेंगे तो उसमें फरमाया कि अल्लाह ताला ने लकद अरसलना रुसुलना बिल बय्यिनाती, और उनके वो आगे आयत है, अब मेरे सामने नहीं है, कि अल्लाह ताला ने वहां पे फरमाया कि उनके साथ, उनके ऊपर अल्लाह ने किताब भी नाजिल फरमाई और मीजान भी उतारी उनके साथ अपने रसूलों पर। क्यों? ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाए। तो जैसे किताब उतारी वैसे ही मीजान उतारा। मीजान का मतलब क्या? वो अहकामात जो इंसाफ का हुक्म दे, इंसाफ करने के ऊपर बातें। तो इंसाफ किस चीज में? क्या इंसाफ ये है कि बस वो जो ताजिर बैठा हुआ है बाजार में, वो जो फ्रूट बेच रहा है एक रेड़ी पे डाल के एक तराजू में, बस ये इंसाफ हो गई कि वो तोले सही तरह, तो ये इंसाफ है? ये सिर्फ इंसाफ नहीं है, इंसाफ सिर्फ तिजारत में नहीं है कि नाप तोल सही कर दिया तो इंसाफ है, इंसाफ हकूक में भी है, इंसाफ फैसलों में भी है, इंसाफ अदालत के निजाम में भी है, इंसाफ नौकरियों के निजाम देने में भी है। हर चीज का एक यानी एक बैलेंस है, उसके अंदर एक इंसाफ होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए ताकि किसी पे जुल्म ना हो, वो ही अपनी हद से आगे ना निकले। अल्लाह ताला ने फरमाया अल्लाह ततगौ फिल मीजान, ताकि मीजान में ज्यादती ना हो, यानी ना इंसाफी नहीं करनी किसी के साथ भी, हर एक के साथ इंसाफ, उसको उसका हक मिले। एक याद रखें, इंसाफ का माना हम ये ना समझेंगे सबको इक्वल मिलना चाहिए ये इंसाफ है, नहीं, इंसाफ मींस कि जिसका जो हक है उसको उसका हक दो। मसलन माँ का जो हक है वो उसको मिलेगा, बाप का जो हक है उसको मिलेगा, औलाद का जो हक है उसको मिलेगा। बाज़ हम सोचते हैं औलाद का क्या हक है, वो तो हम हमारी औलाद ही है, उनका तो कोई हक है ही नहीं, वो तो हम उनके साथ जो मर्जी करें हमारी मर्जी है क्योंकि हम माँ बाप है। नहीं, अल्लाह ने औलाद भी अमानत के तौर पर दी हुई, उनकी भी पूछ होनी है हमसे। हम ये नहीं कर सकते कि हम जो मर्जी बेइंसाफियां करते रहें, जो मर्जी जैसा मर्जी करते रहें, कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं ना। ना इंसाफी भी करेंगे तो हम हक पे हैं फिर भी, नहीं, इंसाफ हर जगह इंसाफ। अल्लाह ताला ने सूरह निसा में फरमाया इंसाफ पर कायम हो जाओ, खा वो इंसाफ तुम्हें अपने खिलाफ ही क्यों ना करना पड़े, या अपने माँ बाप के खिलाफ या रिश्तेदारों के खिलाफ ही क्यों ना करना पड़े। तो चाहे कोई रिश्तेदार ही हो इंसाफ करो, चाहे करीबी रिश्ता औलाद का ही हो इंसाफ करो, इंसाफ की बात कहो। ये नहीं कि मेरा बच्चा है क्या करें फिर, अब यहां पे इंसाफ खत्म हो गया, नहीं, जो हक की बात है वो हक की बात होगी। ना ही किसी अमीर को देख के उससे मुतासिर हो जाओ कि अब ये तो अमीर है आप क्या करें, उनसे इतने इंप्रेस हुए में कि अब हक बात ही नहीं बोल रहे, इंसाफ की बात ही नहीं कर रहे। ना ही किसी गरीब को देख के ये सोचे हाँ ये तो बेचारा है ना, अब इसको ज्यादा ही दे दो क्योंकि ये बेचारा है, क्योंकि ये गरीब जो हुआ, नहीं, चाहे वो गरीब है उसके साथ भी ना इंसाफी नहीं होनी चाहिए, इंसाफ ही होना चाहिए, जितना उसका हक है उतना ही मिलना चाहिए। नहीं कि चलो इसके हक में फैसला दे दो क्योंकि ये गरीब है, ये क्या बात हुई। इसी तरह बाज़ दफा ऐसे होता है मर्द और औरत होती है, तो अब औरत के आंसू देख के ये बेचारी औरत ज्यादा ही तो बेचारी कमजोर है क्योंकि ये रो रही है, तो चलो इसके हक में फैसला दे दिया जाए। नहीं, हम ये सिर्फ अदालतों में नहीं होता, हम अपने घरों में अपनी जिंदगियों में बहुत सारे फैसले करते हैं, बहुत सारी गवाहियां देते हैं, बहुत सारी बातचीत करते हैं, उन सब में इंसाफ के ऊपर रहो। दुश्मन से भी कहा गया, इतनी इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है, सूरह मायदा में दुश्मन से भी कहा गया अदल करो, उसकी दुश्मनी तुम्हें बेइंसाफी पे ना आमादा करे। इससे बड़ी क्या इंसाफ की बात हो सकती है जो हमारा कुरान हमें बताता है कि दुश्मन से भी नहीं कर सकते ना इंसाफी। एक मुसलमान मुल्क है, उसमें मुसलमान और काफिर दोनों रह रहे, ये नहीं होगा कि मुसलमान के हक में बस हो जाए, नहीं नहीं अब वो मुसलमान है ना, हम अपने मुसलमान को ही कहेंगे ना देखे वो काफिर है। नहीं, चाहे वो काफिर है अगर वो हक पे है तो फैसला उसके हक में हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दो लोग आए थे, एक मुसलमान था और एक यहूदी था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदी के हक में फैसला दिया। वो मुसलमान पहले ही नहीं चाह रहा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत में है, तो पहले ही कह रहा था कि अपने यहूदियों के पास ले चलो, किसी और के पास चलते हैं। नहीं, यहूदी ने कहा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले। फिर वो कहने लगा नहीं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इंसान ही है, उनसे भी तो गलत फैसले हो सकते हैं, चलो आओ हज़रत उमर के पास चलते हैं। उसने सोचा हज़रत उमर तो बड़े सख्त है ना, तो उनके पास चलते हैं, वो तो जरूर मेरे हक में ही फैसला देंगे। जब उनके पास गए तो यहूदी ने कहा जी हम वहां पे गए थे पहले, तो उन्होंने मेरे हक में फैसला दिया, अब ये कह रहा है आपके पास आए। जब तुम अंदर गए तलवार लेकर आए और उसका सर तन से जुदा कर दिया। फरमाए जो अल्लाह के रसूल के फैसले के सामने ऐसा करे उसका यही अंजाम होना चाहिए। यानी इंसाफ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं देखा यहूदी है, ये तो यहूदी हमारे इतने दुश्मन है, अब केस हमारे सामने आया ना तो अब इनको मजा चखाते हैं, तो हमारे तो जरूर इसका ही कसूर होगा, मुसलमान का कैसे हो सकता है। हम आप देखें दुनिया के अंदर, हम जहां पे भी हम कोई मामलात देखते हैं, हम इंसाफ नहीं करते, बस ये मुसलमान है अच्छा चलो उसकी तरफ, अगर वो गलत है तो वो गलत है चाहे वो मुसलमान है, फिर हम कह देते नहीं ये मुसलमान ही नहीं ना असल में, ये तो कोई और है। नहीं, अगर मुसलमान है और उसने गलती की है तो हम माने कि ये गलत है, और हमारा दीन कहता है इंसाफ करो, चाहे वो इंसाफ तुम्हारे अपने खिलाफ क्यों ना जाए। نہیں یہاں پہ ہمیں کوئی انصاف نہیں یاد آتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں وہ عورت آ گئی تھی جو قریش کی تھی کہ وہ جس نے چوری کی تھی, ان کے گھر والے تو لے کر سفارش آ گئے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, یہ اتنی بڑی عورت. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے جو بڑے ہیں ان کے اربوں خربوں کی بھی چوریاں ہو جائیں تو وہ بھی ہضم کر لی جاتی ہیں, چھوٹا سا کوئی تربوز بھی اٹھا لے تو اس کو بھی سزا دی جاتی. تو یہ نہیں ہے انصاف. انصاف یہ جو ہر ایک کے ساتھ ہو, پھر چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے. اسی طرح یہ بھی انصاف ہے کہ یہ جو آج ہمارے ہم دیکھتے ہیں ملاوٹ کرنا, ہماری ملکوں کے اندر ایک چیز بھی آپ کو پیور نہیں ملے گی, ایک چیز بھی پیور نہیں ملے گی. ہر چیز کے اندر لیبل کچھ ہے, اندر کچھ ہے, کہا کچھ جاتا ہے اور بیچا کچھ اور جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ انصاف ہے؟ انصاف نا زندگی کے ہر شعبے میں ہے, اس کو کنفائن نہ کریں. اس کو یہ نہ سوچیں صرف اس چیز کے اندر یہ انصاف ہے تو باقی جو مرضی کرے. دیکھیں قوم شعیب جو ناپتول میں کمی بیشی کرتی تھی وہ بھی نا انصافی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تین عذاب نازل کیے تھے, چیخ کا بھی, زلزلے کا بھی, بادلوں کے نیچے کٹھے ہو گئے تھے اس میں سے بھی آگ نکل رہی تھی. تین عذاب آئے تھے ان کے اوپر. سوچیں وہ جو آج قوم شعیب والے کام کر رہے ہیں, ناپتول میں کمی بیشی ہو گئی, خالص چیز نہیں کوئی مل رہی. یعنی پیسے تو آپ خالص کے لے رہے ہیں نا, اور بیچ آپ کیا رہے ہیں؟ یا تو آپ بتائیں کہ اس کے اندر دودھ میں اتنا پانی ہے, یا تو آپ بتائیں کہ یہ شیمپو کے اندر ہم نے باہر کا لیبل لگایا ہوا اور اندر شیمپو کوئی اور ہم نے گھر سے بنا کے ڈالا ہوا, تو پھر تو ٹھیک ہے, پھر کوئی مسئلہ نہیں, پھر بیچتے رہے. لیکن جب آپ کہتے کچھ کرنا, لیتے کسی اور کے پیسے ہیں اور دیتے کچھ اور چیزیں, تو کیا ہے؟ انصاف پہ تو نہیں ہے. جب معاشرے اس طرح نا انصافیاں کرنے لگے ان معاشروں کا کیا حال ہوگا؟ جو لوگ قوم شعیب کا حال جانتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا حال ہو, پھر وہی کر رہے ہوں تو پھر کیا ہے؟ اور جو جانتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کی کتنی بات کی اور قرآن کتنی دفعہ انصاف کی بات کرتا ہے, اور اللہ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے میزان قائم کیا. دیکھیں ہم کتنے سیانے ہیں, ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے میرے ساتھ تو انصاف ہونا چاہیے. کوئی آپ میں سے یہ چاہتا ہے نہیں میرے ساتھ نہ انصاف کرو, بے شک کوئی بات نہیں. ہر ایک بندہ, انسان کی فطرت اندر سے کہتی میرے ساتھ انصاف ہونا چاہیے. اپنے ساتھ چاہتے ہیں انصاف ہو, لیکن دوسروں کے ساتھ نا انصافی, حقوق میں بھی نا انصافی کرتے ہیں. اپنے ہی بچے ہوتے ہیں سارے, ایک کے ساتھ اتنی زیادہ اپنی یعنی نچھاور کر دینا اپنا سارا کچھ, اور دوسروں کو پوچھنا ہی نہ, اور دوسروں کے ہر وقت ان کو تانے سنانے, یہ نا انصافی ہے. نا انصافی حقوق میں بھی ہے. انسان ایک طرف کو جھک جائے تو دوسری طرف کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دے, نا انصافی ہے یہ. تو انصاف کو دیکھیں کہاں کہاں پہ انصاف کے آج دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, گھروں میں بھی, بازاروں میں بھی, دفتروں میں بھی. کیا یہ انصاف ہے کہ ایک بندہ اپنی اپلیکیشن لے کر آئے اور اس کو تو جینوئن ہو, نوکری کے لیے قابل ہو, لیکن اس کی اپلیکیشن چھوڑ کے سفارشی کو رکھ لیا جائے, یہ انصاف ہے؟ تو کہاں کہاں نہیں نا انصافیاں ہو رہی. یہ نہیں کہ صرف بازار میں نہیں ہو رہی, انصاف کو نہیں دیکھا جا رہا, ہر جگہ پہ نا انصافی ہو رہی, ہر محکمے میں, ہر گھر کے اندر. تو حقدار کو اس کا حق دو, واقیم الوزن بالقسط, اور قائم کرو وزن کو انصاف کے ساتھ, یعنی ہر امر کے اندر پیمانے درست رکھو, وزن صحیح رکھو. یہ بھی یعنی انصاف کے لیے, ولا تخسر المیزان, اور نہ نقصان دو میزان میں ترازو. کتنی دفعہ یہ بات آ گئی ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت قرار دے دے, ہم اللہ کی رحمت ہی سے جان چھڑائیں کہ نہیں یہ انصاف نہیں, نا انصافیوں کو کرنا یہ شاید ہمیں زیادہ فائدہ دے گا. اللہ کی رحمت سے جان چھڑا لی. اللہ نے تو اپنی رحمت کے طور پہ میزان کو نازل کی, فرمایا نہیں اس میں نہیں زیادتی کرو, تول میں کمی نہ کرو, اس سے زمین میں فساد ہوتا ہے, اس سے جھگڑے ہوتے ہیں, اس سے امن و امان خراب ہوتا ہے. دیکھو اللہ کے کائنات کو کتنا اس میں انصاف ہے. دیکھا نہیں بیلنس, سورج چاند کا بیلنس دیکھ لو, ستاروں کا بیلنس دیکھ لو, اور اللہ کی جتنی کائنات چل رہی ہے اس میں کتنی ہارمنی ہے. اس وجہ سے کہ انصاف پہ ہے, جس کا جو حق ہے, جس کی جو حد ہے وہ اس کے اندر رہتا ہے, نا انصافی نہیں کرتا, دوسروں کے حدود کے اندر نہیں ٹانگ اڑاتا. تو اللہ تعالیٰ نے انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے. ہم اپنی زندگیوں کے اندر دیکھیں کہاں کہاں پہ میرے سے کسی کا حق مارا جا رہا ہے, کہاں پہ میں انصاف نہیں کر رہی, چاہے کسی کو چیز دینے میں, چاہے حقوق میں, چاہے کہیں پہ بھی. اور اگر ہم بھی اپنی زندگی میں انصاف قائم کریں گے تو ہماری زندگی میں اسی طرح سکون آ جائے گا جیسے اللہ کے نظام میں دیکھیں کتنا سکون ہے. ورنہ یہ اتنا سینسٹیو نظام ہے نا جو چل رہا ہے اوپر, اتنا سینسٹیو ہے کہ اگر بال برابر بھی کوئی ادھر سے ادھر کمی بیشی ہو جائے سب چیزیں درہم برہم ہو جائیں گی, ختم ہو جائے گا یہ سب کچھ, سب ٹکرا جائے گا. وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ, اور زمین اس نے رکھ دی اپنی مخلوقات کے لیے, یعنی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی رحمت ہے کہ اس نے زمین کو بچھا دیا, زمین ہلتی نہیں ہے, زمین انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے. زمین میں اللہ تعالیٰ نے اس کے کھانے پینے سے لے کر اس کے دفن ہونے تک کے سب چیزیں اس کے اندر ہی رکھ دی, کہیں باہر پلینٹس میں جانا نہیں پڑتا کچھ لینے کے لیے. سب کچھ جتنا کچھ تمہیں چاہیے, چاہے تمہارے ضرورت کی چیزیں ہیں, چاہے تمہارے تعیشات ہیں, چاہے تمہارے مرنے جینے کی کام ہیں, وہ سب اسی کے اندر. سبحان اللہ, اور اتنے کروڑوں سالوں سے اسی سے کھا رہے ہیں, اسی کے اندر جا رہے ہیں, تب بھی اس میں کمی نہیں آئی. فیہا فاکہت ونخل ذات الاکمام, اس کے اندر ہیں پھل بھی اور کھجور کے درخت بھی خوشوں والے. اللہ تعالیٰ نے کیسے غلافوں کے اندر سبحان اللہ پھل بھی کور کیے ہوئے ہیں کہ یعنی جب ہم تک پہنچتے ہیں اب ایک کیلا اس کے اوپر غلاف نہ ہو تو کیا حال ہو اس کا, کیا ہمارے تک پہنچے تو کھانے کے قابل بھی ہوگا؟ انار اس کے اوپر غلاف نہ ہو تو کیا ہو؟ اللہ نے, اور تربوز ہو, کتنے یعنی سالڈ سے ان کے غلاف رکھے ہیں تاکہ انسان تک پہنچے تو بالکل صحیح پہنچے. سبحان اللہ, دیکھیں جب مومن کھاتا ہے نا یہ پھل اور ان کو انجوائے کرتا ہے, اور کافر کھاتا ہے نا جو یہ پھل اور انجوائے کرتا ہے, دونوں میں فرق ہونا چاہیے, دونوں میں فرق ہونا چاہیے, کھاتے تو دونوں ہیں. مومن جب کھائے تو اللہ کی اس رحمت کو یاد کرے, کافر کو تو پتہ ہی نہیں ہے, لیکن مومن سمجھے کہ یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے, اس پر غور کرے, اس کو دیکھے تو پہچانے اپنے رب کو. کیا تو ہم بھی کافروں کی طرح نہ کھا لیا کریں, جب بھی کچھ کھا رہے ہوتے ہیں تو سوچا کریں, غور و فکر کیا کریں, اس وقت کھانا بھی اپنے سامنے آئے تو سوچیں اس میں کتنے مسالے, کتنی چیزیں پڑی ہیں تو یہ کھانا ہمارے سامنے آیا, کتنے دن سورج چمکا ہوگا, کتنے دن کسان نے اپنے کھیت میں پانی لگایا ہوگا, کتنے دن اپنے کھیت کی زمین کو نرم کیا ہوگا, ہل چلایا ہوگا, کتنی محنت کے بعد بازار میں آیا ہوگا, کتنی جگہ پہ بکا ہوگا, پھر ایک میرے گھر آیا ہوگا, اور پھر کس طرح سے یہ پکا اور کیسے میرے سامنے آیا, کتنا کچھ ہے اس کے پیچھے. اللہ تو نے کتنا اہتمام کیا ایک میری خاطر, مجھے یہ رسک پہنچانے کی خاطر. جاتے نا کھا لیتے کہیں وہ اسے کھیت سے ہی توڑ کے دانا منہ میں ڈال لیتے, کیا وہی لذت ہوتی جو ایک پکی ہوئی روٹی کی ہے؟ نمک الگ منہ میں ڈال لیتے, کہیں جاتے مرچیں ڈال لیتے, کہیں جاتے گوشت ڈال لیتے, کہیں جاتے تیل ڈال لیتے, تو کیا ہو جاتا کام؟ اللہ نے نہ صرف تمہارے لیے رزق کا انتظام کیا بلکہ لذت کا بھی انتظام کیا کہ لذیذ ہو جو تمہارے کھانے کی چیزیں, پھل ہیں, کھجور ہیں, خوشوں میں جیسے پریزرو کر کے کسی نے تمہارے پاس بھیجی ہوں. وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ, اور دانے, کہیں دالیں کھاتے ہو, کہیں گندم کھاتے ہو, کہیں چاول کھاتے ہو, کتنے اناج ہیں, یہ تمہارا سٹیپل فوڈ ہے, پھل تو دیے, یہ بھی دیا, اور جو ذو العصف ہیں ان کے بھوس والے ہیں, یعنی ان کے اندر بھوسا بھی ہے, اوپر کا جو چھلکا ہوتا ہے اس کے اندر ہوتے ہیں نا چاول بھی, اور آپ دیکھیں وہ جو چھلکا ہے وہ تمہارے جانوروں کے کام ہوتا ہے, ان کے لیے بھی انتظام کیا. پہلے وقتوں کے اندر تو گاڑیاں نہیں تھیں, پیٹرول نہیں تھے, انہی چیزوں کے اوپر سواریاں کرتے تھے نا, ان کے کھانے کا بھی اللہ نے انتظام کیا تاکہ تم ان پہ سواری کر سکو. اللہ کی رحمت نہیں ہے کیا؟ لنک کریں اس کو بار بار پیچھے پیچھے, وہ بھولنا نہیں ہے آیت نمبر 1 کو, वो रैहान और खुशबूदार फूल भी तुम्हारे लिए, यानी खुशबुओं का इंतजाम भी अल्लाह पाक ने तुम्हारे लिए किया। जो खुशबुएं हैं सारी इन्हीं खुशबुओं से लेकर ही इन्होंने खुशबुएं बनाई होती हैं। ये क्या, ये जैस्मीन है, ये रोज की है, ये फलां, तो कितनी सुबहान अल्लाह खुशबुएं अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई तुम्हारे लिए। ये भी इंसान की देखो कितनी कितनी यानी चीज़ों का अल्लाह ताला ने ध्यान रखा कि इसको ये भी दूँ, ये भी दूँ, ये भी इंतज़ाम करूँ। वरना ज़रूरत तो क्या है, वो एक पानी ले ले और एक कोई भी एक स्टेपल फूड हो जाए। कितनी वैरायटी रखी, लज्जत के सामान रखे। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान, फिर तुम कौन कौन सी अपने रब की नेमतों को झुटलाओगे। और तुम दोनों से मुराद कौन है, जिन और इंसान। क्यों जिन और इंसान का कैसे पता चला, यहाँ पे आगे भी आ रही है आयत, उससे भी पता चला कि इन्हीं दोनों को कहा गया। दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लैलतुल जिन में ये तिलावत फरमाई थी सूरा, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को एक दफा सहाबा ने ढूंढा कि कहाँ है, यानी कहाँ गए हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो गायब पाया था, तो देखा कि आप चले आ रहे हैं, पूरी रात ढूंढते रहे, तो देखा कि फिर आप चले आ रहे हैं, तो आपने फरमाया कि मैं जिन्नों को तालीम देने गया था। अब वो जिन्नों की तालीम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको सूरह रहमान सुनाई, तो ये सूरत जिन्नों को भी एड्रेस करती है। और इसमें जिन और इंसान का ही सिर्फ क्यों जिक्र है, इसलिए कि दो ही मखलूकात हैं इस कायनात में जो मुकल्लफ हैं। मुकल्लफ का मतलब क्या, यानी जिनके लिए हिसाब किताब है, बाकी किसी के लिए नहीं है। यानी बाकियों के लिए इस तरह से तो है कि चलो उनसे एक बेसिंग बकरी को सिंग वाली ने मारा तो उसको उसका हिसाब करके मिट्टी कर दिया जाएगा, यानी जन्नत जहन्नुम नहीं है और किसी के लिए। हिसाब किताब के बाद जो नताइज है ना, वो किसी के लिए नहीं है, जैसे इन दोनों के लिए, क्योंकि ये अकल वाली मखलूकात है। तो जिन्नों के बारे में भी अहकाम आते हैं कुरान में, मगर कम आए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसलिए जिन्नों के पास जाया करते थे, उनको सुनाया करते थे उनकी दीन के अहकामात और बताया करते थे उनको। जिन्नात में रसूल नहीं आए हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इंसानों और जिन्नों दोनों के लिए रसूल बना के भेजे गए थे। जिन्नों में ना नज़ीर होते हैं, यानी नज़ीर मतलब क्या, डराने वाले, उनके उलमा होते हैं जो उनको बातें बताते हैं, लेकिन नबी नहीं होते उनके अंदर, ठीक है। तो वो इंसानों से ही सीख के फिर जो जाते हैं, आप जैसे मसलन है कर यहाँ पे कोई जिन बैठा हुआ है और बातें सुन रहा है सारी, और वो भी तालीम ले रहा है, तो हमें नहीं नज़र आते वो, लेकिन वो भी सीख रहे होते हैं, फिर जाके वो बातें बताते हैं अपने लोगों को। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज पढ़ा रहे थे, आपको नहीं पता था, जिन सुन के चले गए और जाके अपनी कौम को बता रहे हैं, सूरह जिन में आता है, तो हमें नहीं पता चलता। अगर वो कहीं कुरान का हलका हो रहा है, कहीं कोई बात, कोई खुतबा हो रहा है, कहीं कोई बताया जा रहा है, तो वहां पे मौजूद हो जाए तो सीख लेते हैं, उनके पास इतनी है कि वो सीख सकते हैं आके इंसानों से भी। तो ये सूरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने पढ़ी थी, और जब जिन्नों के सामने पढ़ी तो आपको पता है ना, उन्होंने इस आयत का जवाब भी दिया जो मैंने आपको बताया कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया। इससे हमें पता चलता है कि जब कोई ऐसी आयत आए जिसमें मिसाल के तौर पे कोई जन्नत की बात है, तो हम दुआ करें अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल जन्नत अल्लाहुम्मा जालना मिन्हु। और अगर कोई अजाब की बात आए, आग की बात आए, तो अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। हिसाब की बात आए तो हम फिर पढ़ें अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब यसीरा, मतलब सुम्मा इलैना हिसाबहु, तो अल्लाहुम्मा हसिबना हिसाब यसीरा, अमन ऊतिया हिसाबा हुबी अमीनी फसोफा यो हासब हिसाबा यसीरा, इस तरह की बातें आए। फम्मा मन ऊतिया हिसाबा हुबी अमीनी, ऐसी बात आए ना, तो फिर हम पढ़ें अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबा यसीरा। इसी तरह अगर कोई ऐसी बात आती है मसल सभी हिस्मा रब्बी कल आला, तो हम कहें सुबहान रब्बी अल आला, सभी बिस्मी रब्बी कल आजीम, तो हम कहें सुबहान रब्बी अल आजीम। तो इस तरह की चीज़ें करनी चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन नमाज के अंदर भी ये करते थे कि जवाब देते थे आयतों का। तो हम चाहे अकेले पढ़ रहे हों या अगर जमात में भी पढ़ें, सारे एक साथ नहीं हो के जैसे आमीन करते हैं वैसे नहीं मतलब, लेकिन खामोशी के साथ अपने मुंह में ही इसका जवाब दिया जाए। तो अब बताया जा रहा है कि इतनी जो अल्लाह ताला ने अपनी रहमतें की हैं, अब पूछा जा रहा है फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकद्दिबान। आला क्या है, उलियुन की जमा है, आला ब्लेसिंग को कहते हैं, नेमतों को। अच्छा, तो पीछे हमने सूरह नज्म में भी पढ़ा था ना, फबी अय्या आलाए रब्बिका ततमारा, तो वो भी पढ़ा था। तो अल्लाह ताला सवाल पूछ रहे हैं, फिर इतनी नेमतें तुम्हारे ऊपर हैं, तुम बताओ कौन सी अपने रब की नेमतों को फिर तुम झुटलाओगे। झुटलाने का मतलब क्या, तकजीब क्या होती है, कज़्ज़ब यू कज़्ज़िबु तकजीब, हमने पहले भी पढ़ा था ये लफ्ज, रिजेक्ट करना ना, झुटला देना। तो हमने पहले रसूलों के बारे में पढ़ा के रसूलों को झुटलाया उन्होंने, उनकी कौम ने, इस तरह पढ़ा था ना। लेकिन यहां पे आ रहा है नेमतों को झुटलाने की बात। तो एक बात नोट कर लें कि झुटलाना तीन तरह से होता है, ठीक है, झुटलाना तीन तरह से होता है। नंबर वन, नोट करें इसको, कि ये झुटलाना कि अल्लाह ने ये नेमत नहीं दी है बल्कि किसी और ने दी है, यानी किसी और का नाम लगा देना मिसाल के तौर पे, या फिर किसी का भी ना लगाना कि नहीं खुद ही मिल गई है, जैसे एथीस्ट कहते हैं, या कोई कहे कि अल्लाह माफ करे भगवान ने दिया है फलां, पता नहीं जो भी, ये लक्ष्मी देवी ने दौलत दी है, ये जो भी इनके हैं जो भी, तो उन्होंने ये नेमतें दी हैं, या अल्लाह का नाम ही नहीं है और किसी और का नाम लगा दिया जबकि नेमत तो अल्लाह ने दी है, ये झुटलाना है। नंबर वन, सबसे बड़ा झुटलाना तो ये हो गया। नंबर टू, ये भी झुटलाना है कि हाँ ठीक है अल्लाह ने तो दिया है मगर इबादत में किसी और को शामिल कर लेना, जैसे मुशरिकीन मक्का करते थे, वो अल्लाह को मानते थे, ये नहीं था कि अल्लाह को नहीं मानते थे, रबूबियत में मानते थे कि रब वो है, उसने पैदा किया आसमान, उसने पैदा की जमीन, उसने पैदा की ये चीजें, हमें भी उसने पैदा किया, ये सब मानते थे, लेकिन किस में शिर्क करते थे, अलूहियत में, कि इलाह वो ही नहीं है सिर्फ, कि सिर्फ वही इबादत के लायक हो और भी हैं। समझ आ गई ये बात, ये भी हमाकत की इंतहा ही होती है कि मानना भी कि अल्लाह ने दिया और फिर पूजा किसी और की शुरू कर दे, तो ये भी झुटलाना है, समझ आए। तीसरा झुटलाना जो मुसलमान करते हैं अक्सर, अब ये सेकंड वाला भी अल्लाह माफ करे बाज मुसलमान भी करते हैं, दिया तो अल्लाह ने, हाँ दिया तो अल्लाह ने ही है, लेकिन सजदे इन पीर साहब ने भी तो दिया, बेटा तो इन्होंने दिया ना, इनका ही करम है कि हम खा रहे हैं, इनका ही करम है कि आज हमारी हस्ती है मौजूद, ये इनके सदके से ही हम मौजूद हैं, ये क्या बातें हैं, यानी इनका ही रहमो करम है, इनका दिया हुआ ही खाते हैं, बाकायदा कहते हैं मिजारों पे बैठ के, इनका दिया हुआ खाते हैं जी, अल्लाह ताला माफ करे हमें। तो मैं तो कह रही हूं कि तीसरा वाला, लेकिन दूसरे वाले में भी कम नहीं है हमारे लोग। तो तीसरा वाला क्या है झुटलाना, कि ये मानना कि ये नेमतें अल्लाह ने दी हैं और अल्लाह ही इस काबिल है कि उसका शुक्र अदा किया जाए, लेकिन शुक्र अदा करने के हक में कमी करना, शुक्र अदा करना ही भूल जाना, जैसे करना चाहिए वैसे करना ही नहीं है, ये भी झुटलाना है कि यानी पता है अल्लाह ने दिया मैं लेकिन शुक्र ही नहीं अदा करते, जैसे अल्लाह ताला को लायक है, जैसे वो डिजर्व करता है कि हम उसका शुक्र अदा करें, हमारे मुंह से ना शुक्रिया ना हो, जैसे हम उसके आगे झुके रहें, शुक्र गुजारी सिर्फ मुंह से नहीं शुक्र अदा करना, जैसे हम उसके सामने झुके रहें, जैसे आजी दिखाएं उसको, वैसे नहीं है, सर उठाते हैं, बातें बनाते हैं, हठधर्मियां शो करते हैं, ये झुटलाना ही तो है। फिर तुम इन सारी चीजों के बाद अगर हम इस तीसरी वाली की रोशनी में झुटलाने को देखें, तो इसके बाद तुम कौन सी नेमत ऐसी है कि अब तुम कहो कि नहीं मैं नहीं मानती, या कौन सी ऐसी नेमत है कि जिसके ऊपर तुम शुक्र अदा करना ही भूल जाओ और शुक्र ना अदा करो उस रब का। हाँ एक सेकंड के लिए ये जमीन हिल जाए ना, जलजला आ जाए, ये तो वो है जिसने वदा लिल अनाम किया हुआ, इसको रख दिया है, बिछा दिया, इसको नीचा कर दिया हमारे लिए, ये जरा सी अनबैलेंस्ड होने लगे तो फौरन हमें अल्लाह याद आ जाएगा, फिर हमारा तकवा तो ऐसा होगा और ऐसे सजदे हो गए और ऐसा रोना होगा, लेकिन जिस वक्त वो सीधी है, बैलेंस्ड है, सलामत है, तब हमें कोई परवाह नहीं, शुक्र याद ही नहीं। अच्छा मीजान कायम है पूरी कायनात में तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए, आसमान की तरफ सर उठाएं और वहां से कोई पत्थर गिरने लगे और सितारे टूट के गिर रहे हैं और चांद हमारी तरफ बढ़ रहा है जमीन की तरफ, तो क्या हाल हो फिर शुक्र बहुत याद आएगा। तो अक्सर हम शुक्र नहीं अदा करते हैं। तो तुकद्दीबान के तीनों माने हैं और ये आयत 31 times इस सूरा में आई है। और हर दफा जब अल्लाह ने कोई नेमत की बात की है, या नाफरमानों पर अजाब की बात की है, या फरमाबरदारों पर इनाम की बात की, तब ये नेमत आई। तो पहले आप देखेंगे सुबहान अल्लाह कि 8 बार ये आयत आई है जब नेमतों की बात की है, जो दुनिया की नेमतें जो अल्लाह ताला ने इंसानों को दी हुई है ना उनके बाद। और सुबहान अल्लाह नोट करें इस बात को कि जब जहन्नुम की बात आई है ना और उसके अजाबों की सजाओं की बात आ रही, तो 7 दफा ये आई है आयत, ठीक है। फिर उसके बाद साबिकून की जन्नत के इनामात की बात आई तो 8 दफा ये आयत आई। और सुबहान अल्लाह फिर असहाबुल यमीन की बात आई तो फिर 8 दफा ये आयत आई। और जहन्नुम के दरवाजे कितने हैं? 7 हैं। और जन्नत के कितने? 8 हैं। जन्नत वालों के पहले दर्जे की बात आई तो 8 दफा ये आयत, जन्नत के दूसरे दर्जे वालों की बात आई तो फिर भी 8 दफा ये आयत। और देखें ट्वाइस आई जन्नत वालों की बात और जहन्नुम वालों की 1 दफा आई। जहन्नुम वालों की नहीं, 2-3 दफा आई कि वो जहन्नुम के जो पहले दर्जे के ऐसे, दूसरे दर्जे के ऐसे, तीसरे दर्जे के ऐसे, ऐसे नहीं आई, बस जहन्नुम वालों की 1 दफा। जन्नत में साबिकून और असाबिल यमीन दो हैं, तो जहन्नुम में नहीं होंगे कोई साबिकून कोई जो दूसरे और क्या ऐसे नहीं होंगे वहां पे। असल में 2 इसके अंदर मैं आपको जवाब देती। एक तो ये कि अल्लाह ताला माफ फरमाए, जहन्नुम में जो हल्के से हल्के अजाब में भी होगा ना, वो भी कहेगा कि मैं सबसे ज्यादा अजाब में हूं, हल्के से हल्के अजाब वाला। तो उसमें तो क्या कोई ज्यादा और क्या कोई कम, हर एक ही अजाब के अंदर कोई नहीं कहेगा कि ओ उसको तो ज्यादा हो रहा है, चलो मुझे थोड़ा कम हो रहा है, मैं आप मजे से बैठ जाऊं, ऐसे नहीं है। जिसके पैरों की जूतियां ऐसी होंगी, उनके तस्मे आग के होंगे, उसका भी दिमाग ऐसे खोल रहा होगा कि वो कहेगा मेरे से ज्यादा अजाब में कोई नहीं, यहां सबसे हल्का अजाब। नंबर 2 बात ये कि देखिए हम दुनिया में भी तो ऐसे करते हैं कि आपकी क्लास में अगर बच्चे हैं, अगर 10 बच्चे फेल हुए तो आप ये नहीं कहते ज्यादा अच्छा फेल ये हुआ है, थोड़ा कम उससे कम फेल ये हुआ, उससे कम ये फेल। जो फेल है वो फेल ही है, एफ ग्रेड एक ही होता है, लेकिन पास वालों में कितने होते हैं? ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, ठीक है, उनमें दर्जे होते हैं, फेल में कोई दर्जा नहीं होता। फेल जो हो गया बस वो फेल है। हाँ जो पास है उनमें कोई ऑनर रोल है, कोई ए प्लस है, कोई ए है, कोई फिर बी है, फिर कैटेगरीज उसमें होती हैं। और यहां पे 2 दफा जो जन्नत की बात आई वो भी अर्रहमान की रहमत को बताती है कि वो फिर भी वो रहमत वाला ही है। देखो जन्नत की बात ज्यादा और जहन्नुम की बात कम है। अल्लाह अकबर। तो ये बड़ी प्यारी है, किसके अंदर बात थी, आगे देखते हैं। खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फखार, उसने पैदा किया इंसान को बजने वाली मट्टी से जो ठीकरी की तरह है। जब मट्टी पानी में मिल जाए और पड़ी हो, देखें कुरान में हमने कितनी दफा पढ़ा ना इंसान की तखलीक का, तो मट्टी कभी तुराब का भी जिक्र आया, अर्द का भी जिक्र आया, तीन का भी जिक्र आया, तीन लाजिब का भी जिक्र आया, और हमाए मसनून का भी जिक्र आया। तो अब यहां पे सलसाल का जिक्र आ रहा है, कभी पानी के साथ गुंदी भी मट्टी का जिक्र आता है, गले सड़े गारे का जिक्र आता है, बदबू वाली मट्टी का, खनखनाती मट्टी का। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं, पहले भी मैंने आपको बताया था, जैसे कुम्हार एक बर्तन बनाने लगता है पहले वो मट्टी लेता है, उसको मिक्स करता है, फिर उसको बनाता है, फिर उसके बाद अभी गीली होती है, फिर उसको सुखाता है, फिर उसके बाद वो खनकने वाली एक चीज बनती है। आपने घड़े को देखा है कभी टक टक करते हुए, ड्राई होता है ना वो बिल्कुल, उसमें से आवाज आती, कई लोग उसको बजाते भी हैं। तो ये है जो बजने वाली मट्टी है तो मट्टी, घड़े भी मट्टी से बनते ना, है तो मट्टी, लेकिन उसको टक टक करते हैं आवाज आती है उसमें। तो ये कोई इसके अंदर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है कि वहां पे कुछ कहा गया यहां पे कुछ कहा गया, बल्कि ये सारे स्टेजेस हैं। हदीस में आता है अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया मट्टी से, जो दुनिया में जगह जगह से ली गई थी, इसी वजह से आदम के बच्चे इसी तरह से पैदा हुए कि कोई स्याह है, कोई गोरा है, कोई दरमियाना है, कोई 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 है, कोई सांवला, कोई वीटिश कलर है, और कोई सख्त है, कोई नरम है, कोई दरमियाना है। देखें सुभान अल्लाह, मट्टी भी तो ऐसी ही होती ना, कोई किसी रंग की है, कोई किसी रंग की है, कहीं बिल्कुल वाइट वाइट मट्टी भी होती है, कहीं की मट्टी सख्त है, कहीं की नरम है। तो लोग भी इसी तरह कई तरह के, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला ने किस तरह से पैदा किया इंसान को, और खलकल जानना में मारिज में नार, और जिन को पैदा किया शोले वाली आग से, शोले वाली आग से पैदा किया। देखो अल्लाह ताला ने उनको एक तरह से पैदा किया एक ऐसी आग से, और वो भी बोलते चालते समझ रखते हैं, और इंसान मट्टी से पैदा किया, वो भी बोलता चालता सांस लेता है, अकल रखता है, समझ रखता है। कैसी अल्लाह ताला की कुदरत है कि उस चीज को अगर आप देखें तो आप सोच नहीं सकते कि इसमें भी कभी ये चीज हो सकती कि ये बोल ले, ये देखे, ये सुने, ये सोचे, ये समझे, और इतनी अकल वाली हो जाए। मट्टी उठा के देखें कभी और सोचें कि ये मैं हूं, ये मैं हूं, इसी से आई हूं, और यही मैंने हो जाना है, तो पता चलेगा कि अपनी हकीकत क्या है। तो फिर फरमाया फबी अय्या रब्बी कुमा तुकदिबान, उस कुदरत वाले रब को देखो, उसने किस से, किस चीज से, किस मैटर से क्या बना दिया, फिर क्या तुम शुक्रगुजारी नहीं करोगे इस बात पे? क्या इस बात को नहीं समझोगे कोई नेमत? जिन्नों को बताया गया कि तुम किस चीज से पैदा हुए, इंसानों को बताया गया तुम किस चीज, फिर दोनों को कहा गया कि तुम किस किस अपने रब की नेमत का इनकार करो, किस किस बात को तुम झुठलाओगे? ये ऐसे ही है कि जैसे माँ बाप कभी अपने बच्चों को कहते हैं ना, देखो बेटा मैं तुम्हारे साथ ये किया, ये किया, ये किया, किस किस बात का तुम इनकार करते हो, इस चीज की तुम नाशुक्री करोगे? अल्लाह ताला के तो ये एहसानात इतने हैं, इतनी नेमते हैं कि इनको गिन नहीं सकते, उसके एहसानात को शुमार नहीं कर सकते। चंद एक का जिक्र इस सूरत में है, फिर किस किस को झुठलाओगे? फिर इसके बाद भी हमारी शिकायतें हों, हाय वाय हो, किस बात पे? शुक्रगुजारी करने के लिए तो बेशुमार चीजें, सोचोगे तो समझ आएगी ना, सोचना ही नहीं, हर वक्त सोचना तो बस मसाइल को ही सोचना। कैसे फिर तुम अल्लाह को नहीं मानते? कैसे फिर तुम उसकी इबादत नहीं करते? कैसे फिर तुम उसके आगे नहीं झुकते? बार बार ये सवाल इसलिए है कि ये नहीं कि किसी को पता नहीं है तो पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी को बताओ, सवाल करके कौन कौन सी, इनमें से बताओ कौन सी, ये नहीं है, रियलाइज कराना है। क्या करते हो तुम, किस किस चीज को भुलाओगे, क्यों भूल के जिंदगी गुजार रहे हो, किस किस चीज से गाफिल होगे, किस किस चीज के मुंह मोड़ोगे? ये तो सबको नजर आ रही है ना सब चीजें, तो इसको बार बार दोहराने से इंसान की गफलत दूर होती है कि वाकई अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तुम कैसे भूल सकते हो उसको, उसका शुक्र अदा करना। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, वो रब है मशरिकों का, दो मशरिकों को और दो मगरिबों का। याद रखिए कुरान करीम में मशारिक और मगारिब भी आ गया, और मशरिक और मगरिब भी आया हुआ, लेकिन यहाँ पे तस्निया भी आ गया, तो ये कैसे फिर हुआ? एक है मशरिक या दो है मशरिक या बहुत सारे मशरिक? तो बात यह है कि मशरिक से सूरज जब तलू होता है तो एक उसकी जगह, और मगरिब में तलू होने की, वो गुरूब होने की एक जगह, तो ये एक मशरिक हो गया, ठीक है। लेकिन हर रोज आप देखते हैं ना टाइम चेंज होता है, आपकी फजर से आप अंदाजा लगा लें कि फजर का टाइम आगे 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 जाना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद जब 22 दिसंबर आ जाती है तो उसके बाद पीछे जाना शुरू हो जाता है, तो एवरी डे नया टाइम होता है ना, तो नया टाइम ही नहीं होता, नई एंगल से भी सूरज निकल रहा होता है, थोड़ा सा एंगल चेंज करता है, थोड़ा सा चेंज करता है, आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा रहा है, आगे आगे जा। फिर यानी एक नया 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 मशरिक एवरी डे हो गया ना, और नया मगरिब हो गया, तो गुरूब का भी टाइम चेंज होता है ना रोज, मगरिब का एक एक मिनट ही चाहे क्यों ना हो थोड़ा चेंज होता है, तो ये क्या हो गए, मशारिक, बहुत सारे मशरिक हैं और बहुत सारे मगरिब हैं। پھر مشرقین اور مغربین کیا ہے؟ سبحان اللہ، مشرقین اور مغربین کیا ہیں؟ یعنی آپ دیکھیں کہ 21 جون کو ایک جگہ سے سورج نکلتا ہے اور چلتا رہتا ہے، آگے 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 چل رہا ہے، اور پھر ایک جگہ پہ جا کے 22 دسمبر کو، جو سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، اس پہ جا کے پھر ایک مشرق کی انتہا ہو جاتی ہے، یعنی ایک سٹارٹ تھا ایک انتہا ہو گئی. اس کے بعد وہ آگے نہیں اینگل لیتا، پھر اس کے بعد پیچھے شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا نا، پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ٹائم، پھر دن لمبے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر راتیں چھوٹی ہونے شروع ہو جاتی ہیں. ابھی ٹائم آگے جا رہا ہے فجر کا، اس وقت پیچھے جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر مغرب کا بھی آگے بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. تو وہ ایک پوائنٹ آتا ہے کہ اس کے بعد آگے نہیں جاتا، پھر ریورس شروع ہو جاتا ہے، واپس اس پوائنٹ کی طرف جہاں سے سٹارٹ کیا تھا، جہاں پہ جون 21 کو سٹارٹ کیا تھا. تو یہ دو ایکسٹریمز ہیں نا، یہ دو پوائنٹس ہیں. امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی. دو پوائنٹس ہیں، ایک جہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے، ایک جہاں پہ جا کے اینگلز یہ سارے بس اینڈ ہو جاتا ہے، پھر واپس چل پڑتا ہے. تو مشرقیں بھی بہت ساری اور ان دو ان کے ایکسٹریم پوائنٹس، اور مغربی بھی بہت ساری اور دو ان کے ایکسٹریم پوائنٹس، اور مشرق ویسے تو پورا کا پورا مشرق ہے، اور ایک مشرق اور ایک مغرب ہو گیا. تو اس طرح سے تینوں باتیں پوری ہو گئیں. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی ہوگی، اللہ کرے. اچھا جی، فبأي آلاء ربكما تكذبان، کہ تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سے جس جگہ پہ بھی ہو، تم اللہ کے ملک اور اس کی سلطنت میں ہو، تم اسی کا رزق کھا رہے ہو، تم جہاں بھی ہو اس کو تمہارا علم ہے، وہی تمہاری حفاظت کر رہا ہے، تمہارے پر رحم کر رہا ہے، تمہاری مدد کر رہا ہے، وہ تمہیں بھولا نہیں ہے. پھر تم کون کون سی اپنے رب کی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟